यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
प्रोक्तं श्रद्धाविहीनाय अरण्यरोदनं भवेत्। यदि शिष्य श्रद्धाविहीन है तो उसको शिष्य स्वीकार करके जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए उपदेश देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वन में जाकर रुदन करना। अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण के लिए समर्पित करते हुए कहा, प्रभो मैं अज्ञानी हूं, दीन भाव से ग्रस्त हूं, धर्म के विषय में किं कर्तव्य विमूढ़ हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। कृष्ण के योगीश्वर एवं परमेश्वर रूप से वो परिचित था, इसलिए उनकी शरण जाने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। सदगुरु ही पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि होता है, जो जीव जगत और ब्रह्म की ग्रंथि खोलकर शिष्य को तीनों तत्वों की विशेषता और उनके जुड़ने के रहस्य को शिष्य पर प्रकट कर देता है। गीता जगत गुरु कृष्ण के कमल मुख से प्रकट ज्ञानोपदेशों की गंगा है, जो युगों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर रही है। अथ द्वितीय अध्याय।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
तथा कृपयाविष्टं अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विशीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्जुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्ति कर्म अर्जुन।
कृष्ण ने देखा अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं, उसका मन करुण भाव से आपूरित है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में तुझ जैसे योद्धा का मोहग्रस्त होना आर्य आचरण के विपरीत है, इससे न तो तुझे स्वर्ग मिलेगा न ही यश।
क्लेप्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्वै उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्सयामि पूजार्हावरिसूदन।
हे अर्जुन, इस प्रकार की क्लैव्यता तुझ जैसे योद्धा के अनुरूप नहीं है। हे शत्रु संहारक, हृदय की इस शुद्र निर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। विवशता बताता हुआ अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, पितामह और गुरु द्रोण पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं, वो तो मेरे संपूज्य हैं।
त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भय शमपीह लोके, हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्, नाचैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा नदीजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा।
हे मधुसूदन, इन महानुभाव श्रेष्ठ गुरुजनों का संहार करने की अपेक्षा मैं इस लोक में भीख मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेयस्कर समझता हूं। हे कृष्ण, गुरुजनों के रक्त में सने अर्थ और काम जनित भोगों को मैं कैसे भोग सकूंगा? वास्तव में युद्ध करने और युद्ध न करने में से कौन श्रेष्ठ है, हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। हमें यह भी पता नहीं कि इस युद्ध में विजय किसे मिलेगी, कैसी विडंबना है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धार्तराष्ट्र हमारे सम्मुख युद्ध के लिए खड़े हैं।
कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुत्याग यच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्।
हे माधव, मेरा स्वभाव कायरता के दोष से ग्रसित हो गया है और धर्म के विषय में कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मुझे नहीं सूझ रहा। इसी कारण हे ऋषिकेश, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा कल्याण कैसे और किन साधनों से संभव है, आप ही निश्चित करें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे आप संभालें। क्या निष्कंटक सब प्रकार से संपन्न राज्य और स्वर्ग पर आधिपत्य मेरी शोक संतप्त इंद्रियों को सुख दे सकेंगे?
एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः।
संजय ने युद्ध का विवरण देते हुए बताया कि हे राजन, निद्रा को वश में करने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को इस प्रकार शोक से विह्वल देखकर इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले कृष्ण मुस्कुराकर बोले,
अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेवे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्।
हे अर्जुन, जो शोक करने के विषय ही नहीं है तू उन्हीं विषयों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसी बातें करता है। सुन, जिनके प्राण निकल गए हैं और वो जो जीवित हैं, पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। हम तुम और ये सभी राजा हर काल में थे, ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहीयति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत।
हे अर्जुन, जीवात्मा इस मानव के शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में रहती है, वैसे ही जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो धैर्यवान इस परिवर्तन से विमोहित नहीं होते। हे कौन्ते, सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करने वाली इंद्रियां और विषयों का संयोग अनित्य है, तू इन्हें सहन कर ले।
यम ही न व्यथंकेते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुंतस त्वनयोस्तत्वदर्शिभि।
हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान दृष्टि से देखने वाले जो धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न भोगों से व्याकुल नहीं होते, ऐसे व्यक्ति ही अमृत तत्व पाते हैं। हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। ज्ञानी पुरुष सत और असत को इसी प्रकार से देखते हैं।
अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमप्यस्यास्यन्ना कश्चित् तर्कुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम् अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत।
अविनाशी परमात्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस अविनाशी तत्व को हे अर्जुन तू जान ले। ये जीवात्मा अनश्वर, अप्रमेय और नित्य स्वरूप है, अतः उसके विनाश की चिंता न कर। हे भरत श्रेष्ठ, तू युद्ध कर।
या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।
हे अर्जुन, ये आत्मा तो वास्तव में अविनाशी है। जो इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं वे अज्ञानी है, क्योंकि ये सनातन तत्व आत्मा न तो कभी किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है।
न जायते म्रियते वा कदाचित् नावं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे।
हे भारत, आत्मा न किसी काल में जन्म लेता है और न कभी मरता है, उसी प्रकार यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है। वास्तव में आत्मा अजन्मा, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह अविनाशी तत्व कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, शरीर ही अनित्य है, परंतु यह आत्मा तो अजर अमर है, ये कैसे मरेगा?
वेदा विना ಸಾಕ್ಷಿಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ಏನಂ ಅಜಮವ್ಯಯಂ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ ವೇದಾವಿನಾಶಿನಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ಏನಂ ಅಜಮವ್ಯಯಂ ಕಥಂ ಸ ಪುರುಷಃ ಪಾರ್ಥಕಂ ಘಾತಯತಿ ಹಂತಿಕಂ.
हे कुंती पुत्र, जो इस आत्मा को अविनाशी नित्य और अपरिवर्तनशील समझता है वो पुरुष किसे तो मारेगा और किस पर आघात करेगा. अतः आत्मतत्व के इस स्वरूप और स्वभाव को ठीक प्रकार से समझकर अपने इन संबंधियों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा.
वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि.
यह नित्य अविनाशी आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों का परित्याग कर देता है और उसके स्थान पर नवीन शरीर उसी प्रकार से ग्रहण कर देता है. जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, सृष्टि का विकास क्रम ही जीर्ण शीर्ण के त्याग और नवीनता की प्राप्ति में अंतर्निहित है.
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयम् सनातनः.
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा भी नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाई है, अक्लेद्य है और उसी प्रकार अशोष्य है. यह आत्मा नित्य है, ये तो सर्वव्यापी अचल सदैव स्थिर और सनातन तत्व है.
अव्यक्त्योयम् अचिन्त्योयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुं अर्हसि अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितु मर्हसि.
हे पार्थ, आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी है. आत्मा के इस स्वरूप का तो कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है, अतः शोक मत कर. यदि तू आत्मा को व्यक्त होकर जन्म लेने वाला तथा मरणशील मानता है तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है.
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना.
हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है, अतः ऐसी अपरिहार्य स्थिति में तू शोक क्यों करता है? ये समस्त प्रकृति अपने संपूर्ण प्राणियों के साथ अब प्रकट से प्रकट हुई, फिर अब प्रकट हो जाएगी, इसमें शोक की क्या बात है।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वापि एनं वेदन चैव कश्चित्।
हे परंतप, अव्यक्त और सशक्त होने के कारण कोई इस आत्म तत्व को अत्यंत आश्चर्य से देखता है, दूसरे विद्वान उसका आश्चर्यजनक वर्णन करते हैं, जिसको दूसरे बुद्धिमान विस्मित होकर सुनते हैं, पर इस आत्म तत्व को देखने वाले, वर्णन करने वाले और सुनने वाले व्यक्तियों में से जानता कौन कौन है? कोई नहीं।
सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु मर्हसि, स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितु मर्हसि, धर्माथि युद्धात् क्षेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
हे अर्जुन, शरीर में स्थित आत्मा सदा अभद्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तू शोक मत कर। यदि तू अपने धर्म के कारण भयभीत है तब भी तू शोक मत कर, क्योंकि धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसी में उसका कल्याण है।
स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्, अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि।
हे पार्थ, धर्मयुद्ध में प्रवृत्त हुए क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, भाग्यवान क्षत्रिय वहां इच्छा अनुसार सुख भोगते हैं, किंतु यदि तुम धर्म युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो धर्म और यश खोकर केवल पाप ही कमाओगे।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते, भयाद् रणाद् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
लोग युगों तक तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे। अरे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। जो तुझे सम्मानित दृष्टि से देखते थे वे तुझे छोटा समझेंगे, और महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे।
अवाच्य वाताश बहुन बदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
हे अर्जुन, शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा और न कही जाने योग्य बातों की यहां वहां चर्चा करेंगे, इससे अधिक दुखदायी क्या होगा? यदि युद्ध में मरा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए निश्चय कर और युद्ध के लिए तत्पर हो जा।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि।
हे पार्थ, सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान दृष्टि से देख और तब युद्ध में तत्पर हो, तू कभी भी पाप का भागी नहीं बनेगा। ये सारी बातें मैंने ज्ञान योग के संबंध में कही हैं, अब वही बातें कर्म योग के विषय में सुनो। यदि बुद्धि पूर्वक उस योग से जुड़ेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा।
नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्।
हे कौन्ते, कर्म बीज का विनाश नहीं होता और इस क्रम का उलटना संभव नहीं है। धर्म का अल्प संयोग भी व्यक्ति को महान भय से बचा लेता है। कर्म योग में स्थित बुद्धि निश्चय में एक ही रहती है, जबकि अस्थिर बुद्धि से युक्त अविवेकी मनुष्य इसमें अनेक भेद उत्पन्न करते हैं।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यद अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति।
लोगों को सांसारिक भोगों में प्रीति होती है, वे कर्मफल में आसक्ति रखते हैं और उनकी स्थापना में सुंदर मधुर बातों को प्रस्तुत करते हुए वेद वाक्यों के प्रमाण देते हैं। उनकी दृष्टि स्वर्ग को ही सर्वोपरि देखती है और वे भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति को ही जीवन कर्म का फल मानते हैं।